हरे कृष्णा। आज के रविवार सत्संग कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का और अतिथियों का हार्दिक स्वागत। हर रविवार की तरह आज भी सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में हम रविवार सत्संग कार्यक्रम मना रहे हैं। 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन हुआ, 11 से 12 प्रवचन होगा, 12 से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा और 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद भी है। तो हम सबसे विनती करते हैं कि आखिर तक कार्यक्रम में बने रहे। अभी हमें प्रवचन देने के लिए उपलब्ध है श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु। तो प्रभु जी का स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपया व्यासासन की तरफ मुंह कर कर बैठ जाइए। प्रभु जी श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज यहाँ के सीनियर ब्रह्मचारी है। कई सालों से वे प्रचार कार्य में है। पहले वे राधा गोपीनाथ मंदिर में हेड पुजारी के रूप में सेवा प्रदान करते थे। गोवर्धन इको विलेज में आने के बाद डीटी डिपार्टमेंट के साथ साथ उन्होंने प्रचार कार्य भी संभाला है। अनेकों अनोखे गांवों में जाकर वे प्रचार करते हैं और हर साल लगभग 500 भक्तों को लेकर वो यात्रा भी निकालते हैं। अभी कुछ दिनों पहले साउथ इंडिया दक्षिण भारत में यात्रा वो करके आए हैं सभी भक्तों को लेकर। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रभु जी मकर संक्रांति का महत्व, आध्यात्मिक महत्व हमें बताएंगे। तो प्रभु जी का पुनः एक बार 3 बार हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jai Radha Vrindavan Vihari Radha Vrindavan Vihari Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Gaurang Nitai, Gaurang Nitai, Gaurang Nitai, Jaya Gaurang Nitai. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Jaya. Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur. Gaur Premanandi, Harinam Sankirtanaki, Srila Prabhupadaki. Om Agyant Mirandasya Gyananjana Shalakaya. Chakshurun Militamena Tasmai Sri Gurave Nama Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunathanvitam tam sajivam sadvaitam savadhutam parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatta Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktarunda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Taj साप्ताहिक रविवारी उत्सव में आपका सबका स्वागत है। तो आज बड़ा ही महान पर्व है भारतवर्ष में। सब जगह मकर संक्रांति उत्सव मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांत पुराणों में इसका अलग अलग तरह से वर्णन आता है। तो विशेष करके जो मकर संक्रांत दिन है, ये दिन पे सूर्यदेव अपने पुत्र शनि महाराज उनके घर उनको मिलने जाते हैं, क्योंकि शनि देव जो है ये अपने जो 12 राशि होती है, इसमें मेष राशि से मीन राशि तक मेष ऋषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुल वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। मेष राशि से मीन राशि तक जो 12 राशि होती है उसमें एक होती है मकर राशि, और मकर राशि के जो देवता है वो शनि देव है। तो सूर्य देव उनको मिलने जाते हैं और एक महीना उनके घर रहते हैं। पुत्र और पिता में कभी कभी मतभेद होते हैं, लेकिन सूर्य देव वो सारा मतभेद बाजू छोड़ के अपने पुत्र के घर एक महीने के लिए रहते हैं। तो इसलिए जो मकर संक्रांत, वैसे तो संक्रांत हर महीने होती है, अपने वैदिक कालगणना के अनुसार सूर्य के अनुसार कालगणना होती है और चंद्र के अनुसार कालगणना होती है। तो सूर्य के अनुसार जो कालगणना होती है उसमें हर मास के अंत में संक्रांत आती है, तो उसमें महीना पूर्ण होता है। और चंद्र के अनुसार जो कालगणना होती है उसमें महीना जो है पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। तो इस तरह से हर महीने संक्रांत आते हैं, लेकिन ये जो मकर संक्रांत जो है ये विशेष माना गया है, क्योंकि मकर संक्रांत के दिन देवताओं का दिन शुरू होता है। इसलिए कई राज्यों में हम देखते हैं कि मकर संक्रांत के दिन नया वर्ष का शुरुआत होता है, क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन पृथ्वी को सूर्य जब प्रदक्षिणा करते हैं तो सूर्य को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूर्ण करने के लिए एक दिन लगता है उनके अनुसार, देवताओं के अनुसार, और अपने अनुसार सूर्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा एक वर्ष में पूर्ण करते हैं। तो जब सूर्य की प्रदक्षिणा शुरू होती है तो ये मकर संक्रांत यहाँ से शुरू होती है और कर्क राशि तक है देवताओं का दिन पूर्ण होता है, इसमें 6 महीने लगते हैं। ये इसके कहते हैं उत्तरायण, देवताओं का दिन होता है, और जो देवताओं की जो रात होती है 6 महीने की, उसे कहते हैं दक्षिणायन। जैसे हमारा 12 घंटे का दिन होता है और रात होती है, तो वैसे देवताओं का भी अपने अनुसार 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, उसे कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण की जो शुरुआत है मकर संक्रांत से होते हैं। हम महाभारत में देखते हैं कि कैसे पितामह भीष्म जब वहाँ शुरुआत हुआ महाभारत युद्ध का, तो पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध के अंत में अर्जुन के बाणों से पूर्ण उनका शरीर छलनी हो गया था, फिर भी 2 महीने तक वो रुके रहे। किसलिए? उत्तरायण की राह देख रहे थे। वैसे तो पितामह भीष्म ये महाजन है, भगवान के बड़े भक्त हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। वैसे तो शास्त्र में गीता में भगवान कहते हैं अंतकाले चमामे स्मरण मुक्त्वा कलेव, अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करता है उसे वापस से भौतिक शरीर धारण करने आवश्यकता नहीं है। यम यम आप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जिस प्रकार के भावना में शरीर छोड़ता है उस प्रकार का शरीर उसे प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी वो आदर्श स्थापित करने के लिए, खास किसके लिए, योगी जनों को आदर्श स्थापित करने के लिए पितामह भीष्म उत्तरायण का राह देखते हैं। उत्तरायण शुरू होते ही आज के दिन पितामह भीष्म शरीर का त्याग करते हैं। पितामह भीष्म को जो इस संसार से भगवत धाम जाने का जो दिन है वो आज का दिन मकर संक्रांत। तो पितामह भीष्म ऐसे हर अपने वैदिक संस्कृति में जो जो उत्सव आते हैं सारे उत्सवों के पीछे ये बड़ा शास्त्र का अलग अलग भगवान के जो लीला है, भक्तों के जो लीला है उसमें शामिल है। हम लोग तो खाली उत्सव मनाते हैं, जैसे दीपावली मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, या अलग अलग जो उत्सव मनाते हैं, तो उसमें खाली क्या होता है, खाना पीना नाचना बस यही होता है। लेकिन ये उत्सव में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि सुनना, श्रवण करना कि जो लीला हुई है। जैसे इस गोवर्धन इक्विलेज में हम आते हैं, गोवर्धन इक्विलेज में यहाँ पर श्री राधा वृंदावन भी आ रही है, मदन मोहन जी वृंदावन फॉरेस्ट है, सब कुछ घूमने के लिए इतने अच्छे अच्छे जगह है, गार्डन्स है और फोटो निकालने के लिए बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर आकर कोई अगर सुनता नहीं है तो ट्रिप व्यर्थ हो जाता है। आपको थोड़ा सुकृत मिलता है, भगवान का दर्शन किया है, लेकिन यहाँ पर आकर सबसे बड़ा लाभ तब होगा जब हम सुनेंगे। जो भगवान की लीला है, तीर्थ स्थान जो है उसमें शक्ति होते कि अपने अस्तित्व को शुद्ध करने की, लेकिन कब होगी? जब हम वहाँ की जो लीला है उसके बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे। यस्यावश्रयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुद्रपते पुंसाम शोक मोह भयापह। यस्यावश्रयमाणायाम, जब हम सुनते किसके बारे में? कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण की चर्चाओं के बारे में जब हम सुनते हैं, भक्ति उत्पत्ति पुंसाम, अपने हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, और उससे क्या होता है? शोक मोह भयापह, अपने जीवन में जो भूतकाल के बारे में शोक होता है, हम देखते हैं ना भूतकाल के बारे में जो भी कुछ होता है, कोई समारोह में जाते हैं और कोई ठीक से बात नहीं करता तो पूरा दिन हम सोचते रहते उसने ऐसा बात क्यों नहीं किया, हम इतने उसको मिलने के देखा क्यों नहीं, शोक हा? कोई मोबाइल ले लेते हैं फिर बाद में दूसरा मॉडल आने के बाद शोक शुरू हो जाता है, अरे वो मॉडल लिया हो तो अच्छा होता था तो शोक हमेशा भूतकाल के बारे में शोक करते रहते हैं, और तो वर्तमान के बारे में मोह होता है, कुछ चीज़ मिल जाती है तो हमेशा लगता है वो मेरे पास ही रहनी चाहिए, अटैचमेंट हो जाता है, मोह निर्माण हो जाता है, और भविष्य के बारे में हमेशा भय रहता है, क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वापस कोरोना आएगा तो क्या होगा, भय रहता है, आएगा नहीं लेकिन वो भय रहता है हमेशा। तो लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में सुनते हैं, तो क्या होता है? शोक मोह भयापह। जब भगवान के बारे में चिंतन शुरू होता है तो भौतिक संसार की चिंता कम हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सुनना जो है बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पितामह भीष्म देखते हैं कि महाभारत में इतना उनका जीवन कठिन है, वो गंगा पुत्र है, शंतनु महाराज और शंतनु महाराज गंगा से उनका जन्म हुआ, और फिर बाद में जब उनको पता चला कि सत्यवती जिनका विवाह शंतनु के साथ होना, उनके पिता के साथ होना है, इसलिए लेकिन वो क्या वो कहती है कि मेरा पुत्र राजगादी पे बैठेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, वचन लेते हैं कि मैं कभी भविष्य में राजगादी का स्वीकार नहीं करूंगा। तो सत्यवती कहते हैं आप राजगादी का स्वीकार नहीं करोगे, राज सिंहासन का स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन आपके जो पीढ़ी है, वंशज है, वो तो राजगादी मांगेंगे, फिर क्या होगा? तो क्या करते हैं, वचन लेते हैं मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो पितामह भीष्म कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रह रहे थे, कोई वनवास में जंगल में नहीं रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे? राजभवन में रह रहे थे, जहां पर सारे राज सुख है, राज वैभव है, सब कुछ इंद्रिय भोग के सारे सारे साधन वहां पर, सामग्री वहां पर है। ऐसे जगह पर कोई व्रत लेना कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो सोचिए कितना कठिन प्रसंग होगा। तो तभी जैसे ही वचन लेते हैं मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी राजगादी का स्वीकार नहीं करूंगा, तो सारे देवता आकाश में आकर भीष्म 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 करके पुष्प वृष्टि करते हैं कि भीष्म मतलब बड़ा कठोर, इतना कठोर कि वचन ले नहीं सकता है, ऐसा कठोर वचन उन्होंने ले लिया। और आगे देखते हैं धृतराष्ट्र राजगादी, पंडु राजा का देहांत हो गया, धृतराष्ट्र आसन पे बैठ राज सिंहासन में बैठ गए, लेकिन वो राजा का कोई उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, कार्यकाल के लिए कुछ समय के लिए वो राजा बने थे, लेकिन वही राजा रह गए, लेकिन दुर्योधन को फिर राजा बनना था। तो हमेशा पांडवों के साथ अधर्म होता रहा, हमेशा उनके साथ उनके जीवन में हमेशा तकलीफ आती रही, और पितामह भीष्म उनको सब कुछ अपने जीवन में देखना पड़ रहा था कि युधिष्ठिर धार्मिक है, उनको राजा बनना चाहिए, लेकिन दुर्योधन शकुनी दुशासन कपट से युधिष्ठिर को राजा नहीं बनने दे रहे थे, बार बार उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के संकट ला रहे थे। पहले तो भीम को बचपन में ही विष दे दिया, भोजन दे दिया, नदी में फेंक दिया। दूसरी बार लक्षाग्रह में पांडवों के साथ कुंती के सबको जलाने की उन्होंने योजना बनाई। फिर द्युतक्रीड़ा में उनको वनवास दे दिया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। और सारा भीष्म पितामह को पता है कि गलत है, लेकिन वचन क्या था, जो भी राजा बनेगा उसको मैं असिस्ट करूंगा, जो भी राजा बनेगा उसका मैं सेवक बनकर रहूंगा। तो ये वचन की वजह से कभी कभी हम जानते कि जो बच्चे होते हैं माता पिता को पता रहता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन बच्चे कभी कभी हट कर बैठते हैं, मुझे लेना ही है। उनको पता है कि माता पिता को इससे बच्चों को शायद नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हट की वजह से कभी कभी उनको सुनना पड़ता है। वैसे पितामह भीष्म को कई बार इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और फिर जब युद्ध हुआ, भगवान के महान भक्त है, महाजन है, फिर भी जब युद्ध का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से और उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त उनके क्रोध में है, कौरवों की बाजू से लड़ रहे हैं। तो सोचिए एक भक्त के लिए कितना बड़ा दुख होगा कि मेरे आराध्य देव सामने हैं और अर्जुन के रथ के सारथी हैं। लेकिन भक्त जो होता है आश्लिष्यवा पादरता पिनष्टुमाम, कि आप मुझे आलिंगन दो या मुझे ठुकरा दो, मैं बस आपका सेवक ही हूँ। भले आपके साइड से मुझे युद्ध करना हो या आपके विरोध में युद्ध करके बदनाम होना हो, मुझे मंजूर है। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम में जो है क्या सही है क्या गलत है वो सोचते नहीं है, उसमें बस मुझे भगवान की भक्ति करना है, भगवान की इच्छा पूर्ण करनी है, बस मुझे जो भी कृष्ण चाहते हैं मुझे स्वीकार है। और तभी जब अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, दुर्योधन पितामह भीष्म से आकर कहते हैं कि मुझे आपकी क्षत्रिय के ऊपर शंका है, डाउट है, आप अपने क्षमता के अनुसार क्षत्रियत्व के अनुसार युद्ध नहीं कर रहे हैं। सोचिए कोई बड़ी मेहनत करके अगर पीएचडी डिग्री ले ले और उसे कोई कहकर आकर कहे मुझे आपकी डिग्री में थोड़ा डाउट लग रहा है, वो कैसा लगेगा उसको? नहीं, किसी ने बड़ा मेहनत करके कोई फ्लैट खरीदा है और उसको आकर कहे के कि मुझे लगता है थोड़ा 2 नंबर का पैसा कमा के कुछ किया है आपने, झोल करके कुछ किया है, तो कितना दुख होगा उसको। नहीं, कोई मेहनत करके कुछ कमाता है। तो वैसे पितामह भीष्म कोई संसार का योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता था, ऐसे योद्धा थे, लेकिन फिर भी उनको दुर्योधन कहता है कि मुझे आपके युद्ध के ऊपर शंका है। तो पितामह भीष्म इतने क्रुद्ध हो जाते, कहते कि ठीक है, वो देखना ही है, देखो कल एक तो अर्जुन का वध होगा या तो फिर कृष्ण शस्त्र उठाएंगे। और भगवान कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब यहाँ पितामह भीष्म और अर्जुन में इतना द्वंद्व युद्ध हुआ, इतना कठोर युद्ध या घमासान युद्ध वहाँ पर हो रहा था, तो अर्जुन टिक नहीं पा रहे थे क्योंकि भीष्म पितामह के क्षत्रियत्व को ललकारा था, सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जब अर्जुन और अर्जुन तो युद्ध करते समय सोचे तो मेरे पितामह कैसे उनके साथ में युद्ध करूँ, कैसे उनके ऊपर शस्त्र चलाओ, तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और कृष्ण कहते अर्जुन भीष्म पितामह इतने क्रोध से युद्ध कर रहे हैं, त्वे से युद्ध कर रहे, और उनके बाण जो पितामह भीष्म के खाली अर्जुन को नहीं लग रहे थे, भगवान कृष्ण को भी लग रहे थे। क्योंकि तो भगवान कृष्ण जो है वीर रस का आनंद ले रहे थे, वीर रस का, जैसे वो उनके भीष्म पितामह के बाण अर्जुन को कैसे लग रहे थे, जैसे कोई प्रेमिका किसी प्रेमी को कोई गुलाब का फूल मारे, क्या उसको लगता है आनंद आता है, वैसे एक भगवान कृष्ण अपने भक्त के बाणों को आनंद ले रहे थे, लेकिन अर्जुन को भड़का रहे थे, कह रहे थे अरे अर्जुन देखो भीष्म के बाण खाली आपको ही नहीं मुझे भी लग रहे हैं, उन भगवान के जख्म हो रहे हैं, रक्त वहाँ से बह रहा है। तभी लेकिन अर्जुन जो है पितामह के साथ इतना द्वेष के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण नीचे छलांग लगाते हैं और भीष्म पितामह भीष्म की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। और रास्ते में जैसे ही देखते कि एक रथ का पहिया गिरा है, उसको हाथ पे उठाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं। तो जैसे ही पितामह भीष्म देखते कि कृष्ण इतना सुंदर उनका सांवले कृष्ण है, लेकिन घोड़ों के जो पैर है उससे जो धूल उड़ती है उससे उनका पूर्ण शरीर जो है ऐसा सफेद सा हो गया है, धूला सा हुआ है। तो देखकर और साथ साथ घुंघराले बाल है, इतना सुंदर वर्ण देखकर पितामह भीष्म अपने शस्त्र को नीचे रख देते हैं और कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं तो आज के लिए राह देख रहा था, आज के दिन के लिए तो मैं ये सारी तपस्या कर रहा था कि बस आपके हाथ से मेरा वध हो जाए, आपके हाथ से अगर मुझे मृत्यु मिल जाए तो सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी, सारे मेरे दुख मिट जाएंगे, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो ये एक पितामह भीष्म का भाव था। तो यहाँ पर कृष्ण जब युद्ध हो जाता है तो यहाँ एक समय आता है कि अर्जुन से कृष्ण कहते कि आप वचन दो, प्रतिज्ञा लो, कौंते प्रतिज्ञाने न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नुकसान नहीं होगा, मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होगा। तो अर्जुन कहते कि हे वासुदेव, आप ये वचन दे दो, कि आप वचन दे रहे तो आप बताओ संसार को। तो कृष्ण कहते कि नहीं अर्जुन, क्योंकि मैं अपने वचनों को तोड़ने के लिए बड़ा प्रसिद्ध हूँ, मैं बार बार वचन लेता और तोड़ देता हूँ, किसके लिए, भक्तों के लिए। यहाँ पर अर्जुन को रक्षा करने के लिए जो वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये वचन मैंने तोड़ दिया है। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते कि लोग मेरे पे विश्वास नहीं रखें लेकिन आपके ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि भक्त का रक्षण करने के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, किसी रूप का धारण करता हूँ, किसी को वचन को तोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे पे लोग विश्वास नहीं रखेंगे, इसलिए आप वचन दो कि कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पितामह भीष्म अंतिम समय जब आता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन पांडवों से कहते हैं कि हम आज पितामह भीष्म को मिलने जाएंगे। पितामह भीष्म 2 महीने से यहाँ पर युद्ध स्थल पर शरशय्या पर लेटे हुए हैं, इतने बाण लग चुके हैं कि 2 बाणों के बीच में 1 उंगली भी नहीं जा सकती, इतने बाण अर्जुन के शरीर में लगे हैं। और कृष्ण कहते हैं हम मिल जा, क्यों, क्योंकि और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम पूरे राज वस्त्र राज साधन पूरे परिधान करके जाएंगे। जब कोई बीमार होता है, कहीं अगर किसी का देहांत होता है तो हम कोई अच्छे सूट बूट पहन कर नहीं जाते हैं, साधारण वस्त्र पहन कर जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर पितामह भीष्म शरशय्या पे है, मृत्युशय्या पे है, लेकिन उनको मिलने के लिए भगवान क्या कहते हैं, अच्छे वस्त्र राज वस्त्र पहन कर जाएंगे, राज वैभव के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पितामह भीष्म हमेशा इच्छा थी कि पांडव हमेशा सुख में रहे, आनंद में रहे, हमेशा जीवन भर उन्होंने कष्ट सहन किए हैं, एक बार मैं उनको अच्छे सुख में देखना चाहता हूँ। तो ये भगवान जानते थे, इसलिए कृष्ण कहते कि हम राज वैभव के साथ पितामह भीष्म को मिलने जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पितामह भीष्म से भगवान कृष्ण कहते कि आप अपना इतना ज्ञान का भंडार आपके पास है, ये सारा भंडार खोल दो, उपदेश करो। तो पितामह भीष्म कहते कि आप आदि गुरु है, आपके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में जो नैराश निर्माण हुआ था, युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि ये सारा जो युद्ध हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मुझे राजा बनना था इसलिए लाखों लोगों को वहाँ पे मरना पड़ा, इतने से विधवा हो गए, सर मैं ही कारण हूँ इसके लिए। एक वैष्णव का एक स्वभाव होता है, जब भी कोई नुकसान होता था अपने पे ले लेता है, कोई अपराध हो जाए तो अपने पे ले लेता है, एक वैष्णव का एक स्वभाव होता है। वैसे युधिष्ठिर महाराज वो अपने पे सारा सार ले रहे थे। तो कृष्ण कहते कि कृष्ण उनको समझाते हैं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज का डिप्रेशन कम नहीं होता है। स्वयं व्यास देव आकर समझाते फिर भी नहीं होता है। इसलिए भगवान जो है कभी कभी अपने भक्त को अपने से श्रेष्ठ दिखाते हैं। अपना जो ऐश्वर्य है, एक ज्ञान का ऐश्वर्य है, एक संपत्ति का ऐश्वर्य है, एक शक्ति का ऐश्वर्य, कभी कभी भगवान अपने भक्तों के द्वारा मेरे से मेरे भक्त ज़्यादा शक्तिमान है। कभी अर्जुन का सारा युद्ध का श्रेय अर्जुन को दे देते हैं, अर्जुन की वजह से सारा महाभारत का अर्जुन को हीरो बना देते हैं। वैसे देखा जाए तो सारा युद्ध जो है किसकी वजह से जीते थे? भगवान कृष्ण की वजह से। इसलिए तो युद्ध के अंत में देखते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आप नीचे उतरो। तो पहले तो हर बार भगवान कृष्ण नीचे उतरते थे, सारथी नीचे उतरता है, लेकिन आज जो अंतिम दिन था तो कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन आप नीचे उतरो। तो कृष्ण अर्जुन कहते हैं आप उतरो, तो नहीं आप उतरो, नहीं आप, नहीं आप, ऐसे अंततः आप नीचे, मैं कहता हूँ आप नीचे उतरो। जैसे अर्जुन उतरते हैं फिर बाद में भगवान कृष्ण उतरते हैं, पूरा रथ जो है विस्फोट हो जाता है, भयंकर विस्फोट हो जाता है। तो अर्जुन देखते रहते क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया। तो कहते हैं कि इतने सारे दिव्यास्त्र जो थे कर्ण के द्वारा, अनेक अनेक द्रोणाचार्य के द्वारा, ये सारे दिव्यास्त्र अनेक अनेक अस्त्र जो है वहां पर टिके हुए थे, वो रथ को ध्वंस नहीं किए थे, क्योंकि कृष्ण वहां पर विराजमान थे। जैसे कृष्ण उतर गए तो सारा रथ जो है ध्वंस हो गया। तो यहाँ पितामह भीष्म कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर को समझाते फिर भी वो समझते नहीं है, व्यासदेव समझाते फिर भी समझते नहीं है। लेकिन यहाँ पर पितामह भीष्म के पास उनको ले जाते हैं। कृष्ण इससे क्या दिखाते कि हम समझाने के बाद भी युधिष्ठिर समझे नहीं, पितामह भीष्म समझाने के बाद वो समझ गए। तो ज्ञान का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, पितामह भीष्म के द्वारा दिखाते हैं कि मैं मेरे से पितामह भीष्म के ज्ञान से युधिष्ठिर संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से वहाँ पर समझाते हैं। और जब ये ज्ञान दे रहे थे, अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते, राजकारण का ज्ञान देते हैं, राजनीति का ज्ञान देते हैं, गृह आश्रम का ज्ञान देते हैं, तो द्रौपदी वहाँ पर हंसती है, बोले आप क्यों हंस रही है। तो तभी द्रौपदी कहते कि आप तो अभी इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वस्त्र हरण हो रहा था तब तो आप चुप थे। तो तभी बाह्य कारण बताते हैं कि क्योंकि मैं दुशासन, दुर्योधन, शकुनी इनके साथ रहा था, उनका संग कर रहा था, उनका अन्न खा रहा था, इसलिए बुद्धि दूषित हो गई थी। लेकिन जब अर्जुन के बाण लगे तभी मेरा चित्त शुद्ध हो गया। लेकिन ये बाह्य कारण, लौकिक कारण है, अंतरंग कारण जो है वो चाहते थे ये कृष्ण की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान दिखाना चाहते थे कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर धर्म है, और जो धर्म के विरोध में वो अधर्म है, और अधर्म की ओर कोई भी क्यों ना हो, फिर पितामह भीष्म जैसा क्यों ना हो, जिनके पास इच्छा मृत्यु का कवच है, इच्छा मृत्यु का कवच धारण करके भी अगर कोई अधर्म की ओर जाता है तो वहाँ पर उसको पराभव स्वीकार करना ही है, उसका नाश होना ही है। ये भगवान का ये जो धर्म स्थापना का जो युद्ध है, एक ओर धर्म स्थापना करना चाहते हैं और दूसरी ओर अधर्म में कोई भी क्यों ना हो उसको नष्ट होना ये दिखाना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण की इच्छा समझकर भीष्म पितामह जो भी हो रहा था उसको स्वीकार कर रहे थे। कृष्ण इच्छा फिर बाद में क्यों ना हो, लोग मुझे अधर्मी कहे, अधर्म कर कि ओर से मैं लड़ रहा हूँ, ये क्यों ना लोग मुझे कहे, फिर भी मुझे स्वीकार, क्योंकि इससे कृष्ण का कार्य हो रहा है, भगवान का धर्म स्थापन का कार्य हो रहा है, इसको दिखाना चाहते थे। ये अंतरंग कारण है। इस प्रकार से जब मकर संक्रांत के दिन तक पितामह भीष्म वहाँ रुकते हैं, और इस दिन पिता भीष्म ध्य त्याग करते हैं। तो पिता भीष्म जब ध्य त्याग करते हैं तो एक मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना सारा सब कुछ किया फिर भी इतना दुख मुझे सहन करना पड़ा, वो सोचते नहीं है। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मुझे सब कुछ भूलना है, खाली क्या याद रहना है, जिस प्रकार आप अर्जुन के रथ से नीचे उतरकर रथ का पहिया लेकर मेरे ओर दौड़ रहे थे मुझे मारने के लिए, बस वही दृश्य मेरे आंखों के सामने रहे और मैं शरीर को त्याग कर सकूं, वही वो चाहते हैं। तो इस प्रकार से पिता भीष्म अंतिम समय तक कैसे व्यक्ति को शरीर छोड़ना चाहिए, कैसे अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए, कैसे जीवन में कर्तव्य पालन के लिए करने के लिए कितने दृढ़ होना चाहिए, ये पिता भीष्म के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन हम भीष्म चरित्र को याद रखना चाहिए। किसी भी जीवन में हमें अगर आगे बढ़ना है तो भीष्म रथ, जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यम कीर्तयन्तो माम एतन्तश्च दृढरतः, हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, नामस्मरण करना है तो कैसा होना चाहिए, दृढ़ रथ होना चाहिए। दृढ़ रथ कैसे होना चाहिए, जैसे पितामह भीष्म है, ध्रुव महाराज है, इनके जैसा हमारे अंदर अगर दृढ़ रथ है तभी व्यक्ति जीवन में यशस्वी बनता है। जीवन में जब तक कोई त्याग नहीं है तो इस भौतिक संसार कुछ में कुछ चीज प्राप्त करनी है वो भी इतने आसानी से मिलते नहीं है। जैसे कुछ साल पहले मुलाकात में जब लता मंगेशकर जी हमारे जो महान थोर गायिका है उनसे जब पूछा गया कि जीवन में आप क्या नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा कि जीवन भर मैं कभी 70 साल तक आइसक्रीम नहीं खा सके। तो जीवन भर उन्होंने आइसक्रीम नहीं खाया, इसलिए तो इतना तो ये भी करने के लिए दृढ़ रोक रखता है। कोई क्रिकेटर है तो इतनी बड़ी तपस्या होती है कि दिन में 14 घंटा जाकर 18 घंटा जाकर उन्हें प्रैक्टिस करनी है। आसानी से कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता, कोई बड़ा सिंगर नहीं बनता, कोई बड़ा फिल्म स्टार नहीं बनता, इसके बड़े पीछे बड़ी दृढ़ रोत लगता है। लेकिन वही अगर हम दृढ़ रोत अगर भक्ति के लिए रखते हैं, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं अगर अच्छी तरह से नामस्मरण करना है तो क्या करना चाहिए, तृणादपि सुने चेन तोरिव सहिष्णु अमानिन मानदिन कीर्तनीय सदा हरि। व्यक्ति सदैव कीर्तन कर सकता है, हरिनाम कर सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदैव हमेशा जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, सतत नामस्मरण करना है। लेकिन कब होगा, जब हमारे अंदर तृणादपि सुनिश्चना नम्रता, तृण भाव जो है नम्रता होनी चाहिए, तृणादपि सुनिश्चना त्रोरीव सहिष्णुना सहनशीलता दृढ़ता होनी चाहिए, और अमानिना मान देना, हमेशा हम लोग मान की अपेक्षा रखते हैं कि मुझे मैं यहाँ पर गया मेरे सामने झुकना चाहिए, मुझसे उसने मुझे बात करनी चाहिए, हम बात नहीं करना चाहते हैं भाई बहुत बार, अमानिना मान देना कीर्तनीय सुधारे। तो लेकिन पितामह भीष्म से हम देखते हैं कि कोई भी संकट आ जाए, कोई भी संघर्ष आ जाए, लेकिन व्यक्ति जब दृढ़ रहता है तो व्यक्ति हमेशा जीवन में एक यशस्वी बनता है। और जो मकर संक्रांत होती है, एक तो पितामह भीष्म चरित्र हम सुन सकते हैं जिन्होंने इस दिन देह त्याग किया, और इस दिन बहुत सारे उत्सव जो है अलग अलग राज्यों में मनाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में पोंगल करके मनाते हैं, जैसे हमारे अपने यहाँ पर दीपावली उत्सव होता है वैसे वहाँ पर पोंगल उत्सव होता है। पोंगल मतलब जो राइस और गुड़ का जो पदार्थ बनाते स्वीट बनाते उसे पोंगल कहते हैं। तो आज के दिन जो फसल खेत में आती है तो अलग अलग राज्य में जैसे उड़ीसा में अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है, तो खेत में जाकर जो फसल आती है पहला जो धान होता है उसको खेत में ही पकाते हैं, गुड़ और राइस एकत्र करके उसका पोंगल करके स्वीट बनाते हैं, और पहला धान का जो पकवान आता है, भोजन आता है, वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो वहाँ पर सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं, भूमि को धन्यवाद देते हैं, जो फसल देवता, जो अलग अलग देवताएं मदद कर, सबको हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक अप्रिशिएशन करने का, धन्यवाद देने का एक उत्सव मनाते हैं, उसे कहते हैं पोंगल उत्सव। तो दक्षिण भारत में नव वर्ष की तरह ये पोंगल उत्सव जो है मनाते हैं, पंजाब में अलग तरह से मनाते हैं, उड़ीसा में मनाते हैं, और महाराष्ट्र में जो है तिल गुल बांट कर इसको मनाते हैं। तिल गुल जो है, क्योंकि अभी तक ये शिशिर ऋतु होता है और इसके बाद जो शरद ऋतु शुरू होता है, तो एक शिशिर ऋतु जब खत्म होने लगता है तो ये ठंडी का मौसम होता है, तो हम तिल जो है गर्म होता है, उसमें थोड़ा उष्णता होती है, तो हम ये प्रतीक ये स्वीकार करते हैं कि अभी हम उष्णता की ओर जा रहे हैं, इसलिए इसको कभी कभी तिल संक्रांति भी कहते हैं। तो या फिर कई जगह पे होता है कि जो गाय होती है उनको वो ऐसा तिल का जो पेड़ होता है उसको जलाते हैं और बाद में उसके ऊपर से गाय को बैल को ले जाते हैं, तो संक्रांत कहते हैं कि अभी ठंडी कम हो रही, उष्णता आ रही है, उष्मा आ रहा है, तो इस प्रकार से ये उसको उत्सव को मनाते हैं और सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं विशेष करके। जैसे भगवान कृष्ण गीता में जगते भगवान के सूर्य और देव जो है, सूर्य और चंद्र दो भगवान की आंखें हैं, दिन में सूर्य और रात में चंद्र है, दो आँखों से भगवान हमेशा देखते हैं। तो इस सूर्य को धन्यवाद देने के लिए एक पतंग भी उड़ाते हैं, उनको आपका स्वागत है तो पतंगबाजी भी करते हैं, तो सूर्य का जैसे हाय बाय करते हैं, पतंगबाजी भी करते हैं, तो उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए भी उसको ये उत्सव मनाते हैं। और इसी दिन एक बड़ा विशेष कार्य हुआ है कि जब भगीरथ महाराज तपस्या कर रहे थे, सगर पुत्र 60,000 सगर महाराज के जो पुत्र थे, जब यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया गया, उसको ढूंढने गए, तो कहाँ, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको लगा कि क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने चुराया था उन्होंने एक कपिल मुनि के आश्रम में उसको बांध दिया, तो जब ये 60,000 पुत्र आ गए, उनको लगा कि कपिल मुनि उन्होंने घोड़ा चुरा कर बांध रखा है और अभी तपस्या का नाटक कर रहे हैं। तो जब उनको वो आक्रमण करने गए तो कपिल मुनि की वो आंखें भी नहीं खोली उन्होंने, खाली शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और उनके तेज से वो भस्म हो गए। और जब अंशुमान जी आ गए, उन्होंने जब उनको विनंती की तो उन्होंने कहा कि जब स्वर से गंगा आएगी, उनका स्पर्श होते ही सारा उनका उद्धार हो जाएगा। तो भगीरथ महाराज उनके पहले अंशुपान, फिर दिलीप और अनेक जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने तपस्या की। आखिर भगीरथ महाराज ने जब तपस्या की तो स्वर्ग से गंगा नीचे आ गई, मंदाकिनी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा प्रवाह जो है ये धरा जो है धारण नहीं कर पाएगी, मैं धरा को फाड़ कर, पृथ्वी को फाड़ कर नीचे पाताल में चले जाऊंगे, तो कौन इसको स्वीकार कर सकता है। तो एक ही व्यक्ति है, कौन है, शिवजी हैं। तो इसलिए शिवजी को क्या कहते, गंगाधर। तो शिवजी की वापस उन्होंने प्रार्थना की, तो शिवजी को प्रसन्न करने के बाद जब गंगा आ गए तो शिवजी ने जटाओं में उसको बांध लिया। आप तो कहते कि पाताल में चले, धरती को फाड़ कर पाताल में चले, कितने शक्ति देखते, शिवजी ने बांध लिया, जटा में बांध लिया, तो गंगा बैठ गई। लेकिन भगीरथ महाराज को चाहिए था कि पूर्वजों का उद्धार हो, तो वापस शिव जी की उन्होंने प्रार्थना की। जहाँ पर हम गंगोत्री देखते हैं, वो जो स्थान है जहाँ भगीरथ ऋषि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, और शिव जी के जटा से गंगा जो प्रकट होती है वो गंगोत्री है। तो वहाँ से फिर वापस भगीरथ महाराज का रथ आगे चलता है और गंगा जो है पीछे उनके चलती है, और वहाँ से फिर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचती है, जो उनकी जो आश पड़ी है उसको स्पर्श होते ही सारे 60,000 उनके प्रयोजन का उद्धार होता है। गंगा फिर सागर से मिलती है, तो गंगा को सागर से मिलने का जो दिन है उसे कहते हैं मकर संक्रांति। उसे आज भी वहाँ पर सागर मेला करके, माघ मेला करके एक बड़ा, एक महीने का बड़ा उत्सव होता है, तो ये भी मकर संक्रांति के दिन होता है। तो हम भागवत से भगीरथ ऋषि का कैसे गंगा को उन्होंने प्रसन्न किया और कैसे धरातल पार आ गए उसका भी वर्णन सुन सकते हैं। देखिए एक ही उत्सव है लेकिन क्या क्या वहाँ पर लय हुई है। हम तो तिलगुल खाते हैं और बस उसे मस्त रहते हैं और थोड़ा छोटा मोटा खुद पतंग उड़ा लेते हैं, लेकिन आज के दिन मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह का चरित्र सुनना है, भगीरथ महाराज का चरित्र सुनना है, गंगा देवी के बारे में उनका चरित्र सुनना है। इतने सारे सुंदर लीला हुए और खास करके जो गौड़ीय है इनके लिए तो बड़ा ही उत्सव का दिन है, उनके उनके लिए तो बड़ा प्रार्थना का दिन है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु जो यहाँ पर हम दर्शन करते हैं, राधा वृंदावन बिहारी हैं और वृंदावन बिहारी के साइड में इस बाजू में जो है गौरांग महाप्रभु है, गौर अंग उनका जो रंग है गौरांग है। कृष्ण वरम तुषा कृष्णम सांगो पांगास पाश्रम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंत सुमेध साहक, जो सावले रंग के है कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण गोरा रंग धारण करके चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और इस संसार में हरिनाम का प्रचार करने के लिए सन्यास धारण करते हैं, तो सन्यास जिस दिन धारण किया चैतन्य महाप्रभु ने एक मकर संक्रांति का दिन है, तो गौड़ियों के लिए कितना एक स्मरण का दिवस है, पवित्र दिवस है कि श्री कृष्ण जब 5,000 वर्ष पर लीला कर रहे थे तो गोपियों का जो त्याग है वो देख रहे थे कैसे। तो वैसे तो गीता में भगवान कृष्ण कहते ए तमाम प्रपद्य तांत बजामि हम, जिस प्रकार कोई व्यक्ति मेरे पास आता है उसी प्रकाश में भी उसके पास आता हो, लेकिन गोपियों का जो प्रेम था इतना तीव्र इतना गाढ़ा प्रेम था, तो भगवान कृष्ण कहते कि आपका जो त्याग है, जब भगवान कृष्ण खाली वंशी वदन कर रहे थे रात के समय सारी गोपियाँ कि घना जंगल है उसमें कैसे हम जाए। हाँ हम लोग जब कोई साप्ताहिक सत्संग होता है उसको भी जाने के लिए दिन में जाने के लिए सोचते 10 बार सोचते कैसे जाए, कैसे गाड़ी करें, चल के जाए बाइक से जाए, कितने बार सोच के हम लोग कहीं सत्संग में आते हैं। लेकिन गोपे जैसे ही भगवान कृष्ण का वंशी वदन हुआ कोई वस्त्र पहन के उल्टा सीधा पहन कर वो चल पड़ी, स्तनपान कर रहे बच्चों को नीचे रखा चल पड़े, किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रसाद सर्व कर रहे थे वैसे चम्मच रख दिया सीधा चल पड़ी। तो भगवान कृष्ण उनका जो त्याग है, इसलिए एक बार जब यमुना किनारे गोपी बैठी है ध्यान कर रहे हैं नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं तो देखकर अचंभित हो जाते, बोलते अरे हिमालय में लोग ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण अपने हृदय में ध्यान देखने के लिए परमात्मा रूप को देखने के लिए, लेकिन कृष्ण जिनके घर में खेल रहे हैं उनका माखन चोरी कर रहे हैं उनके बच्चों को दूध पिला रहे, ये गोपियों को कब से तपस्या करने की जरूरत पड़ी। तो नारद मुनि गोपी से पूछते हैं कि आप क्यों तपस्या कर रही है, तो तभी एक गोपी कहते कि जो काना है ना वो टेढ़ा है, तीन जगह पर वो बांके हैं घुटनों में कमर और मान, तीन जगह पर एक टेढ़े है वो अंदर जाकर बैठा है, तो अंदर जाकर बैठा है तो जो भी करने जाती हो तो वही दिखता है, गाय का दोहन करने जाते हो वही दिखता है, खेत में जाते वही दिखता है, मैं भोजन बना देने जाते वही दिखता है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है उसके लिए, उसको निकालने के लिए मैं तप कर रही हूँ। हमारा उल्टा है, हम अंदर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक बार तो एक माला अच्छा से हो जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ठीक से नाम स्मरण कर सके, जीवन में ठीक से चार नियमों का पालन कर सके, इसके लिए हम लोग कष्ट करें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गोपियाँ जो है इतनी तीव्र भक्ति है, इसलिए भगवान कृष्ण कहते न पारे तहम, ब्रह्मा जी के पूरे दिवस में भी मैं आपके ने जो कष्ट लिए है मेरे लिए, आपने जो मैंने प्रेम दिखा है ब्रह्मा जी के पूरे दिन में भी मैं उसको वापस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मन में ही सोचते हैं, जैसे आज मेरे लिए गोपियां जो है घर छोड़कर बाहर निकली है, जब कलयुग में मैं आऊंगा तो मैं भी गोपियों के लिए घर छोड़कर निकल जाऊंगा, संन्यास धारण करके निकल जाऊंगा। और वही हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब गा जाकर वापस आ गए तो इतने गोपियों के विरह में, राधारानी के विरह में मन मग्न हो रहे थे कि गोपी गोपी कर कर वो बाहर जा रहे थे। तो बाकी के जो बच्चे बोलते, अरे आप गोपी गोपी क्यों बोल रहे हैं, आप कृष्ण कृष्ण बोलो। अरे कृष्ण को क्यों मैं बोलूँ, मुझे तो गोपी बोलना है। इस प्रकार से लोग जो है उनके पीछे छड़ी लेकर उनके पीछे भागे, तो लोग जो है अलग अलग प्रकार गलत प्रकार से सोचने लगे। तो गोपियों ने उनके लिए घर छोड़ा था, अभी संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु गोपियों के लिए जो हरिनाम संकीर्तन है उसका प्रचार करने के लिए, कृष्ण प्रेम गोपियों का क्या है उसको सिद्ध करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए संन्यास धारण के वो आज के दिन है। इसलिए मकर संक्रांत का दिन जिस दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले थे, तो इस प्रकार से कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास पार्षदम। तो संग पांगास्त्र मतलब जो संगी जो है उनके, ऐसे अलग अलग अवतार में भगवान कभी धनुष बाण लेकर आते हैं, कभी सुदर्शन लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान अपने जो पार्षद हैं उनका लेकर आए हैं। और अंग कौन है, नित्यानंद प्रभु है, और उपांग जो है बाकी सारे जो उनके साथ जो साथी है वो सारे उपांग बताया गया है। और अस्त्र क्या है चैतन्य महाप्रभु का, अस्त्र है भगवान चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य। चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम करने जाते थे गांव गांव में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों हाथ ऊपर करके जब वो हरिनाम करते थे, इतने सारे लोग आ जाते थे, इतने लोग दर्शन लेने उनको देखने के लिए आते थे। इतना सुंदर व्यक्ति कौन हो सकता है, इतना खाली मनुष्य ही उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। जब वो झारखंड जंगल में निकले, जब वहाँ हरिनाम करने लगे, तो बाकी के जो हिंस प्राणी थे, शेर था, भालू था, सिंह था, ये भी चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य के ऊपर आकर्षित हो गए और उनके साथ नृत्य करने लगे। आज भी झारखंड जंगल के एक नदी के किनारे एक ऐसी जगह है जहाँ पर हाथी के, शेर के, हिरण के जो पंजे हैं वो खड़ के ऊपर पड़े हैं। क्यों, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कर रहे थे जो वहाँ का जो पत्थर था वो भी पिघल गया था, तो उनके जो पैर के जो निशान है वो भी उसमें उमड़ गए। तो इस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिषार्थ एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यस तमहम प्रपद्ये। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन हरिनाम का प्रचार करने के लिए चैतन्य स्वरूप धारण करके कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण करके कृपा देने के लिए, संसार को कृपा देने के लिए आज के दिन संन्यास धारण करते हैं। इस प्रकार से आज का दिन जो है मकर संक्रांत, कि सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जब प्रवेश करते हैं उसे कहते संक्रमण। तो संक्रमण जो है ये आज का विशेष दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देवताओं का दिन आज शुरू होता है। आज के दिन उत्तरायण शुरू होता है, मतलब देवताओं का दिन शुरू होता है, 6 महीने के लिए उत्तरायण होता है। और पितामह भीष्म भी इस दिन के लिए राह देख रहे थे कि वो उत्तरायण के दिन शरीर छोड़ सके। तो ऐसे दिन में जब हम कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, आध्यात्मिक स्थल को भेंट देते हैं या सत्संग करते हैं, इसका जो फल है कई गुना ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आज के दिन हम सब यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, और सत्संग में भाग लिए हैं। बहुत ही मानव समाज के लिए आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के दिन पवित्र कार्य करने से कई गुना उसका लाभ जो है कई गुना ज़्यादा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए, हमें भी सेवा करने का मौका दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व बताया। प्रभु जी का हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी भक्तों का और अतिथियों का भी धन्यवाद, आप समय से यहाँ पर बैठे रहे और अच्छे से प्रवचन सुना। अभी 12 बजे ठीक 12 बजे श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का दर्शन खुलेगा, उसके पश्चात उनका महाआरती होगा। महाआरती में आप डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। उसके पश्चात 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद की व्यवस्था है। जिन भक्तों को कूपन मिले हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए भी लंच प्रसाद है। थोड़ा अलग जगह पर है ललिता भवन में, तो वहाँ पे सभी जन प्रसाद ले सकते हैं, कोई भी प्रसाद लिए बिना ना जाए। जो भक्त आज पहली बार इस संडे फिस्ट रविवार सत्संग कार्यक्रम में आए हैं उनका हम विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे। हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन मकर संक्रांति का दिन आपके आध्यात्मिक जीवन की अच्छी शुरुआत बने और हर रविवार को यहाँ पर आकर आप हमें उत्साहित करते रहें। अभी सभी जन आरती के लिए खड़े हो सकते हैं। जिन जो भक्त पहली बार आए हैं उनसे विनती है कि जाने से पूर्व यहाँ पे हमारे श्रीमान श्री वल्लभ प्रभु और इनकी टीम है, उनसे मिलते हुए जाइए। वे आपको एक उपहार देंगे और आपके इस्कॉन की संस्था के संबंधी या कृष्ण भावना के संबंधी कुछ प्रश्न है तो उसका सही सही उत्तर भी देंगे। अभी कीर्तन में सभी जन भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।